ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् जयमुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। सुग्रंथराज श्रीमद् भागवतम क्रम के अनुसार सप्तम स्कंद के द्वितीय अध्याय का आज अंतिम श्लोक है, 61वां श्लोक। बोर्ड पे लिखा है, मेरे पीछे दोहराएंगे। श्रीनाद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यम् दितिराकर्ण सस्नुषा उत्तशोकम् क्षणात् त्यक्त्वा तत्वे चित्तमधारयत्। श्रीनाद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा, इति इस प्रकार दैत्यपते है असुरों के राजा वाक्यम वाणी को दिति ही दिति हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष की माता ने आकर्ण्य इस बात को सुनकर सस्नुषा हिरणाक्ष की पत्नी सहित पुत्र शोकम अपने पुत्र हिरणाक्ष का महान वियोग क्षणात् तुरंत त्यक्त्वा छोड़कर सत्तत्वे जीवन के असली दर्शन में चित्तम हृदय को अधारय लगाया। अनुवाद तात्पर्य से श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्री नारद जी ने आगे कहा कि हिरण्यकश्यप तथा हिरणाक्ष की माता दिति ने अपने पुत्र वधु अर्थात हिरणाक्ष की पत्नी ऋषभानु सहित हिरण्यकश्यप के उपदेशों को सुना। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया और उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का असली दर्शन समझने में लगाया। तात्पर्य, जब किसी का कोई संबंधी मरता है तो वह दर्शन में अधिक रुचि लेने लगता है, किंतु जैसे ही अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हो जाती है वह पुनः उन्हीं कार्यों में लग जाते हैं जो कार्य नहीं करने लायक है। यहां तक कि अत्यंत भौतिकवादी दैत्य भी कभी कभी अपने किसी संबंधी की मृत्यु होने पर दर्शन के विषय में सोचते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति की इस मनोवृत्ति को श्मशान वैराग्य बोलते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि चार प्रकार के लोग आध्यात्मिक जीवन तथा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थाथी तथा ज्ञानी। विशेष रूप से जब कोई भौतिक परिस्थिति से अत्यंत पीड़ित होता है तो वह ईश्वर में मन लगाता है। अतः कुंती देवी ने कृष्ण की प्रार्थना करते हुए यह कहा है कि उन्हें जीवन में सुख की अपेक्षा दुख अधिक पसंद है। भौतिक जगत में सुखी रहने वाला व्यक्ति कृष्ण या ईश्वर को भूल जाता है, किंतु कभी कभी वास्तविक पवित्र आत्मा दुख में रह करके श्री भगवान का स्मरण करता है। अतः महारानी कुंती ने दुख पसंद किया, क्योंकि यह श्री कृष्ण को स्मरण कराने का सु अवसर होता है। जब कृष्ण कुंती देवी के पास से स्वदेश लौट रहे थे तो कुंती देवी ने बड़े ही खेद पूर्वक कहा था कि वे दुख में ही अच्छी थी, क्योंकि कृष्ण सदैव दुख में उनके साथ थे। किंतु अब जब पांडव सिंहासन आरूढ़ हुए हैं तो कृष्ण दूर जा रहे हैं। दुख तो भक्त के लिए भगवान को निरंतर स्मरण करने का एक सु अवसर होता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद के अंतर्गत हिरण्यकश्यपु अश्वदाज हिरण्यकश्यपु नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहां पूर्ण हो गए। अमज्ञान दिविदंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोहविष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपकदामयं ददाति स्वपदन्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूर्नवश्नवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंगयतगिरिं जत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरुनदिन तारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं जयतं सुरतुपंगौ मम मंदमतेरगति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहनो वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निधि विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। हरे कृष्ण इति दत्तपतेर वाक्यम दितिराकर्णम सस्नुषा पुत्र शोकम क्षणात् त्यक्त्वा तत्व चित्तम अधारयत। तो इस श्लोक के द्वारा एक प्रकरण पूरा हो रहा है। इसकी अवतारणा करते हुए यानी प्रकरण की पूर्णाहुति करते हुए इस श्लोक को श्री नारद जी उच्चारण किए। हाँ थैंक यू। हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार ये कथा युधिष्ठिर महाराज के द्वारा किए गए राजस्व यज्ञ की कथा है, और उस कथा में नाद मुनि के मुख से उन भगवान की अद्भुत गुणावली उन गाते हुए उनको सबके प्रति समान अवस्था में स्थापित करते हुए श्री नाद मुनि ने युधिष्ठिर के प्रश्न पर इस कथा को उठाया कि जिस कथा का हम लोग श्रवण करते हैं। ये पिछले वार्तालाप आप सब लोग जानते हैं कि नियमित रूप से आप लोग भागवतम कक्षा में आते हैं, इसलिए आप सब अवगत है। और अपनी माता और पुत्र वधू के शोक को इंद्रेश कालज्ञ हिरण्यकश्यपु ने उनको शांत किया, उनको उपदेश देते हुए शांत किया। एक प्रश्न ये उठ सकता है कि इस दैत्य के द्वारा बोला गया प्रवचन श्रीमद् भागवतम में है तो उनका क्या महत्व होगा, क्या वजूद रखता है। वस्तुत इस तत्वज्ञान से युक्त ये जो वार्तालाप है वो वार्तालाप बहुत आवश्यक है। सुनिश्चित भक्त लोग उन भगवान की कथा में और उनके नाम उनके गुणों का गान इत्यादि में निरंतर रत रहते हैं, लेकिन इस पर भी मनुष्य का चित्त ऐसा है कि वो संग दोष के कारण भटक जाता है। उन भटके हुए चित्त को वापस उनकी मूल स्थिति में लाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज जी के परपट में आप देखेंगे कि बारंबार केवल तत्व की आवृत्ति बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि बहुत आवश्यक होता है किस कलयुग की जीव के चित्त को समाहित करके इसी में रखना, कृष्ण कथावार्ता में रखना, यह बहुत आवश्यक होता है। इस श्लोक में जाते हैं, इस श्लोक में कहते हैं कि दत्तपतिर वाक्यम द्वितीय आकर्ण संतुषा, हिरण्यकश्यपु के वाक्य को दत्तराज हिरण्यकश्यपु के वाक्य को सुन करके अपनी उन पुत्र वधु के साथ दीति ने तत्काल पुत्र शोक का त्याग किया। अच्छा शोकान्वित थे तो उनका त्याग किया, तो ये तो शोकान्वित थे, उनका पुत्र चला गया था, इसलिए बाकी हम लोग को कोई शोक नहीं है, है ना। हम लोग तो आराम से बैठ करके भागवतम श्रवण करते हैं, कोई शोक का कारण नहीं है। लेकिन शोक का कारण नहीं होते हुए भी हमारे चित्त में अहर्निश इन भौतिक कुछ वस्तु के प्रति संबंधियों के प्रति राग निरंतर चलता रहता, जो राग भगवान श्री कृष्ण में होना चाहिए उसी राग हम संसारिक उन देह दही आत्मक वस्तु को हम समर्पित रखते हैं, इसीलिए हम लोग दुखी रहते हैं। केवल दुख का कारण यही है कि हमारा जो राग है वो जहां लगना चाहिए श्री कृष्ण में वो नहीं लगता है, इतर जगह माया में हमारा राग का प्रवृत्ति होता है, बहुत कष्टकारक है। खैर इसमें कहते कि तत्व चित्तम अधार्यत पुत्र शोकम तत्क्षण तत्काल छोड़ करके उन तत्वों में अपने चित्त को या अपने चित्त में उन तत्व को धारण किया अधार्यत। तत्व वस्तु क्या है? वास्तविकता को धारण किया सुख सिद्धांत में ये बताया गया है एक आचार्य के द्वारा लिखी टीका में कि दिति ने अपने मन को मना लिया या उनके जो पुत्र वधू थी और उनके जो पौत्र थे उन लोग ने अपने मन को ये सोच करके मना लिया ना भगवत इच्छा से जो कुछ भी होता है ठीक है, ईश्वर इच्छा प्रबल है, काल के ऊपर तो किसी का कोई चलता नहीं है। तत्व अधारियत इसको कहते हैं, तत्व में उन चित्त या चित्त को चित्त में तत्व को धारण किया। सत्य क्या है? ना सत्य तो उनकी मृत्यु होती नहीं जीवात्मा की, यही सत्य है और ये संसार मिथ्या है। श्रील प्रभुपाद महाराज जी अपने तात्पर्य को दो विभाग में बांट करके लिखे हैं, बहुत सुंदर पर्पट है, दो विभाग में उन्होंने बांटा इस पर्पट को। पहले विभाग में उन्होंने समझाया कि कोई कितना भी इस भौतिकतावादी व्यक्ति हो, हिरण्यकश्यपु क्यों नहीं, कोई बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं है, आखिर इस संसार में उनको दुख ही मिलना है और दुख के कारण कभी ना कभी उनकी आंख खुलनी है, आंख खुल जाएगी। वो वापस आंख को मूंद लेते हैं या वो अपने चित्त को इनमें समाहित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तत्वों में हमेशा मन स्थिर नहीं रहेगा, यही निराकारवादियों के साथ होता है ये चीज, क्योंकि उनको कोई सहाय नहीं मिलती है परमात्मा से या ब्रह्म से। परमात्मा तो उपदिष्टान मनता भरता भोक्ता, वो तो जो कुछ भी है बस इच्छा करते जीव को सप्लाई देते हैं उनके कर्मों के अनुसार, उनको कुछ लेना देना नहीं होता है जीव के कर्मों से। और ब्रह्म वो तो बात ही नहीं करता है कि लेना देना कुछ नहीं। तो देखिए जो आसुरी व्यक्ति अपने चित्त को स्थिर करता है प्रभुपाद जी लगते हैं लिखते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो उन मृत्यु को अपने संबंधी की मृत्यु को देख करके उनका हृदय में शोक उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है और कदाचित वो शोक मोह रहते हुए भी अपने संबंधियों को समझा लेते हैं। उतने एक्सपर्ट होते हैं ये लोग कि अपने हृदय को ये भाव छूने नहीं देते, उनके हृदय में बराबर बना हुआ भाव रह गया हिरण्यकश्यपु के हृदय में, मेरे भाई को मारा किसने? ना विष्णु ने, और विष्णु हमारा शत्रु है, बराबर बना रहा। देखिए प्रवचन देखिए, ये लोग तत्व में स्थित हो गए, उनके संबंधी लोग उन तत्व में स्थित होकर के उन्होंने उन शोक को छोड़ दिया, लेकिन उनका हृदय शोक मोह इत्यादि से सतत अभिभूत है और क्रोध इतना उमड़ा हुआ है उनके हृदय में, वो तो आप देख चुके पहले इनके क्रोध को। देखिए ये है आसुरी भाव, श्रील प्रभुपाद महाराज अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि देखिए ये लोग अपने संबंधी की मृत्यु जब आती है तो हिरण्यकश्यपु क्यों नहीं है, बोलते उनके चित्त में शोक उत्पन्न होता है और उसके कारण दर्शन का वो आश्रय लेते हैं। जैसे एक निराकारवादी अपने आप को माया से ऊपर बनाए रखने के लिए दर्शन का आश्रय लेते हैं, ठीक वैसे, लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए दूसरे विभाग में श्रील प्रभुपाद महाराज ने भक्तों के लिए एक बात लिखा है, उन्होंने कहा कि भगवद गीता में उन भक्त की मनोवृत्ति देखी जाती है, चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना, चार प्रकार के व्यक्ति मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिज्ञासी ज्ञानी, है ना। ये बहुत सुंदर व्यवस्था दिया है इस प्रपट से प्रभुपाद जी ने, बोला हमारे भक्तों को हम व्यवस्था देते हैं इन कथा कीर्तन का, क्योंकि भगवान की भक्ति करना तो दैत्य स्वभाव नहीं, असुरी स्वभाव नहीं है, वो भक्त बनना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था दिया है, अलग से व्यवस्था किया। देखिए भगवान के चित्त को भक्त जानते हैं, भगवान की मनसा को भक्त जानते हैं, भगवान इस संसार में क्या चाहते हैं, जीवों को ला करके इन सब योजना को एक भक्त समझता है ना। माया अपनी योजना बनाती है, अनिराकार या असुर तत्व एक अपनी योजना में स्थित रहते हैं, खैर, लेकिन भक्त लोग का प्रयोजन एक दूसरा होता है। इसे कहते हैं कि इन चार प्रकार के व्यक्ति भगवान का आश्रय लेते हैं और वो बहुत समझदार, उदारय सर्वे थे कहते हैं भगवत गीता में, ये सब उदार चित्त है, क्योंकि भगवान का आश्रय ग्रहण करना उदार चित्त वालों का काम है। संकीर्ण चित्त व्यक्ति है जो कंजूस है, केवल जीवन का भोग करना चाहते हैं और पूरे जीवन के आयुष्य को भोग में ही खर्च करना चाहते, कंजूस है वो, कृपण है, उदार चित्त भगवान के भक्त है। इसलिए बहुत सुंदर व्यवस्था श्रील प्रभुपाद महाराज ने हम लोग को दिया है। देखिए सतत कथा कीर्तन में रहने से ये तत्व में जो स्थित मन रहता है उन दर्शन को छोड़कर के एक प्लस पॉइंट आता है उनके पास ना, वो भगवान की देखरेख में आ जाता है, क्योंकि उनकी कथा कीर्तन उनको बहुत प्रिय है कृष्ण को, और उनको करने वाले जन में भगवान का प्रीति चलता है। उन ब्रह्म की कथा लाख करे कोई निराकारवादी, इससे वो ब्रह्म उनके सहायक नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्म के पास कुछ हृदय है तब ना, और परमात्मा के पास इतना लेखा जोखा के अनुसार देते रहते हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है पब्लिक का, उनका कर्म का हिसाब वो देखने वाला व्यक्ति वही डिपार्टमेंट उनके पास है। लेकिन श्री भगवान अपना व्यक्ति को देखते हैं, किसको ना, उनकी कथा कीर्तन श्रवणकारी व्यक्ति को देखते हैं। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि सतत कथा कीर्तन में ही मति बनाए रखें। अगर हम बचना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि हमारा चित्त भी बाहर बहिर्गत नहीं होता है, होता है, साधक कोई भी मार्ग का हो उनका चित्त उन माया के द्वारा बहिर्गत होता है, किया जाता है स्पेशली, इसलिए तो माया है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे चित्त जाता है बाहर। जहां राग है वहां चित्त जाएगा, देखिए इससे जिनका चित्त उन हरि कथा मृत से शोभा पाता है या भगवत स्मरण की शोभा जिनके चित्त में है वहां पर या जिनका राग इनमें हो गया है हरिकथा में। देखिए बहुत तो सुंदर कुछ बातें लिखी गई है नौतमदास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में कुछ बातें लिखते हैं, आइए हम लोग वहां जाते हैं। कहते आन कथा अनव्यता नहीं जनो जाय तथा तुम्हार चरण स्मृति साजे अविरत अविरल तुजा गुण कल कल गाय जनो सतेर समाजे। बहुत सुंदर ये वाक्य है। तो संत लोग हमको एक स्पेशल अलग समाज में बांट करके एक अलग व्यवस्था दी है। अब हमें नहीं रहना है तो ये हमारी मुसीबत है, तब हम मुसीबत मोल लेते हैं। व्यवस्था का लंघन करके हम कुछ अपना कार्य करना चाहते हैं तब तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी हमारे साथ। मैं पटपट के अनुसार बिल्कुल जा रहा हूं, आप देख रहे हैं। वो कहते हैं आनकता आन व्यथा नाही, कहते नाही जाने जायत था, नाही जनो जायत था। व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण कथा को छोड़कर और कृष्ण व्यथा जहां मिलती है उनको छोड़कर सांसारिक कथा और सांसारिक व्यथा में नहीं जाना चाहिए। सांसारिक कथा सांसारिक व्यथा लाएगी लाएगी लाएगी। कितना भी समझदार हुआ है भक्त, देखिए चित्त को बचाने वाले भगवान है, हमारे चित्त का रक्षण करने वाले जिनकी कथा श्रवण करते हैं ना वही, अगर उनका रक्षण नहीं रहा हा? तब हमारे लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। यदि भी भगवान महान करुणामय व्यक्तित्व है इसलिए वो होने नहीं देते हैं। एक बार जो भगवान को बोल देते हैं कि कृष्ण मैं आपका हूं, उनके बाद में भगवान उनको छोड़ते नहीं है। लेकिन जितना देर यहां लगेगा इस संसार में उतना दुख ज्यादा झेलने के लिए हम मजबूर हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इस त्रिपदी में जो लिखा है उन व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। हाँ क्या बोलते हैं ना नाही जेनो जाय तथा, कहते हैं कि इन कथा को छोड़ करके मेरा मन कहीं भीतर दूसरी जगह ना जाए, भगवान को प्रार्थना करते हैं। प्रेम भक्ति चंद्र क्या प्रार्थना है, ठाकुर महाशय ये प्रार्थना करते हुए कहते हैं। देखिए जैसे ही हमारा चित्त इन व्यवस्था को छोड़ता है वो तुरंत व्यथा आ जाती है, क्योंकि संसारिक कथा हमारे मुख से मुख में आ जाती है और श्रवण में संसारिक कथा बढ़ती है तो संसारिक व्यथा का आना बहुत आवश्यक है। वो आएगी ही आएगी, हम लाएगी दो करके हम लाएंगे उनको, क्योंकि हमारा जो मन है ना वो दर्पण की भांति है। अगर हम ऐसे कुत्सित जनों के संगति में पड़ेंगे कि जहां सांसारिक वार्ता ज्यादा होता है तो वो मन ऐनक की तरह है, वो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो तुरंत वो ग्रहण करेगा उनको, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं ग्रहण करेगा उन, हमारा मन का जो आईना है वो ग्रहण कर लेता है और उनके ग्रहण से उन विषय का वार्तालाप सुन करके हमारा चित्त में विषय अभिनिवेश उत्पन्न होता है। श्रीमद् भगवद गीता में तो ध्यायते विषयानुपुंसा संगस्तेषु उपजायते लिखा हुआ है ना। ये शोक मोह जितना भी होता है वो केवल चित्त के राग के कारण होता है। वो चित्त का राग हमारा सांसारिक संबंध में है ना, और जहां चित्त रागान्वित है उनकी कथा को हम श्रवण करना चाहते हैं। अभी हमें कृष्ण कथा में राग उत्पन्न नहीं हुआ है, लोभ उत्पन्न नहीं हुआ है और आप सब लोग जानते हैं
कि उन कृष्ण कथा का लोभ कैसे उत्पन्न किया जाए, बारंबार उनको रिपीट सुनने के द्वारा, सुनी हुई कथा को बार बार श्रवण करना, भले तत्व कथा क्यों नहीं है, उनको बार बार रिपीट रिपीट बस चाहिए, यही व्यवस्था देते हैं। जैसे नतुमदास ठाकुर ने व्यवस्था दिया, वो अपने मन को कहते तुम्हारे चरण स्मृति साजे, ये प्रभु मेरा मन सदैव आपके स्मरण की शोभा से युक्त हो, दूसरी शोभा हमें सुहाई नहीं या दूसरा कुछ स्मरण हमारे चित्त में ना आए। बहुत सुंदर ये त्रिपदी में उपदेश लिखा हुआ है। हम कितना भी प्रयास करेंगे अपने ज्ञान के बल पर कि मैं कथा जानता हूं, मैं यह जानता हूं, मैं वह जानता हूं, हवा हो जाएगा, एक सेकंड में हवा, एक सेकंड नहीं लगाएगी माया, एक सेकंड नहीं देती, हवा कर देगी उस चित्त को। कृष्ण कृपा ही और वैष्णव का कृपा ही हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ, क्योंकि विषयों के ध्यान में चित्त हो जाता है, फिर सब कुछ बंधन का कारण हो जाता है, सब कुछ वो राग इत्यादि उनसे आता रहता है। नहीं, इसी को श्रीमद् भागवतम में श्री ब्रह्मा जी ने वर्णन किया, न तावत रागादय तेनस तावत कारा गृहम गृहम तावन मोहो अंग्री निगड़ो यावत कृष्ण नौते जना। वो भगवान को प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हे भगवान, ये जीव का चित्त जब तक आपके चरणों में रागान्वित नहीं होता है तब तक कहते हैं कि ये गृहस्थी उनके लिए काराग्रह है और राग इत्यादि उन दस्यु की तरह काम क्रोध मद लोभ मोह उस राग रागान्वित चित्त को खाते हैं। ये काम क्रोध मद लोभ जितने हमारे चित्त में हैं, वो क्यों नाश्ता करता है हमारे चित्त का, बैठ करके आराम से नाश्ता करेगा अगर भगवान का स्मरण नहीं है चित्त में, तो फेस्टिवल मनाएंगे ना, क्योंकि यही प्राण है, भगवान का स्मरण मन के लिए प्राण है। और जैसे प्राणहीन देह को कुत्ते नोचते हैं और जिसमें प्राण है उनके पास नहीं भटकेंगे कुत्ते इत्यादि, उसी प्रकार इस स्मरण रूपी जो प्राण है, कृष्ण स्मृति रूपी प्राण जो कृष्ण कथा से, उन लीला कथा उनका गुणगान से जो कृष्ण स्मरण उत्पन्न होता है, उन स्मरण मिलता है, उन स्मरण के प्रति राग उत्पन्न हो जीव का, जो राग संसार में है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर इत्यादि अपने कीर्तन में गाते हैं, वो कहते हैं कि नाम के बल से कब ऐसा स्थिति होगा कि जब इन विषयों की भांति मेरा चित्त भगवान के नाम रूप गुण लीला में लगेगा। एक विषय का चित्त जैसे रागान्वित हो जाता है, सांसारिक भावना में बह जाते हैं, और फिर जैसे वो प्रभु जी व्याख्या कर रहे थे पिछले श्लोक की, है ना, बीते श्लोक की व्याख्या कर रहे थे, उन सांसारिक व्यथा में, ये तो प्रवाह है, उन सुख दुख में ऊपर नीचे जीव तारता उतारता रहता है, कोई निस्तार नहीं है। कहते हैं भगवान तब तक उनके लिए, ये कहते हैं कि ये कामना जो है या राग जो है उस जागान्वित चित्त में मोह उत्पन्न होता है, और मोह कितना भयानक है उनको दिखाया, वही शारीरिक आसक्ति अभी भी हमारे पास है, छूट नहीं गए हम लोग, क्योंकि राग तो हुआ नहीं कृष्ण में। इसलिए प्रभुपाद महाराज की महति कृपा है कि हम लोग को इसमें रख दिया, इस धारा में, कि आप लोग आराम से बैठ करके ये करो। दूसरा चीज नहीं, लेकिन हम दोनों साथ में मिक्स लेकर बैठे, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी थोड़ा जरूरी है, मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाए, कुछ नहीं होगा, हम किसी को बचा नहीं सकते हैं। हमारा चित्त जो आक्रांत होता है ना, उसी मोह के कारण, ये मोह है, और उन मोह का विस्तार का कोई ओर छोट नहीं है, कोई ओर छोट नहीं। ये पूरा संसार केवल ये इंद्रजाल एक मोह की तरह है, जो कुछ भी है ये उनके ऊपर, केवल मोह में ही सब जीव जीते हैं। इस मोह से केवल उत्तीर्ण वही होते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, यावत कृष्ण न तेजना, जब तक जीव आपका चरणों के में आ जाता है, आपके चरणों का स्मरण नहीं करता है ना, तब तक तो ये मोह उनको आक्रांत, दस्यु की तरह उनका समय लुटता रहता है। देखिए, मानव जीवन का एक दुर्लभ समय जीव को दिया जाता है कि जिसमें वो साधना कर सकते हैं, भगवान को साधित कर सकते हैं, लेकिन वो दस्यु की तरह लूट रहे। तो लूटेंगे, और तब तक घर गृहस्थी उन बेड़ियों का फंदा है, पैर में पड़ी, बाकी घर गृहस्थी बहुत ग्रस्त भक्त है ना, लेकिन कोई फंदा नहीं, कोई बेड़ी नहीं उनके पास, क्योंकि उनका चित्त ना भगवान में उन्होंने समाहित कर लिया, अपने चित्त को भगवान में लीन कर लिया। अब इस चित्त में काम क्रोध मद लोभ मोह होता ही नहीं है। देखिए पूरा जो ये जो उपाख्यान नारद मुनि बता रहे हैं, वस्तुतः इतिहास है, और इतिहास में उपाख्यान इत्यादि दिया गया है केवल इसलिए हमारे लिए, वो तो अपनी मां को समझा दे, तत्व में चित्त धारण कर लिया, जो भी तत्व हो उनके लिए उसमें वो चित्त में उनके चित्त में धारण हो गया, लेकिन तत्काल निकल जाएगा। ये भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है, भक्तों को इतना तत्काल निकलने नहीं देना चाहिए, वैराग्य को, उसको उत्तरोत्तर उस वैराग्य का मंथन करते हुए उनमें से जो क्रीम निकलता है भक्ति रूपी, भक्ति रूपी क्रीम को हासिल करना चाहिए। खैर बहुत कुछ बातें लिखी इसमें, इन वैष्णव तोषणी में इन सारी बात बताई गई है, बहुत सुंदर टीका है, मैं लिख करके लाया, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं, उन टीका का व्याख्या करने का समय नहीं है, बाकी अगर टू द पॉइंट जीव गोस्वामी बात का टीका की व्याख्या की जाए अद्भुत है, क्योंकि राग स्वाभाविक सबके चित्त में राग है, वो राग क्यों है, उन परतत्व वस्तु श्री भगवान है ना, कृष्ण है ना, उन कृष्ण में प्रत्येक जीव का राग है, होना ही चाहिए, उसमें नहीं होता है, इसलिए यहां सारा दिक्कत खड़ा होता है, और इसी के कारण सारा प्रॉब्लम भजन में साधक लोग को आता है। वो विधि भक्ति का याजन तक नहीं होने देता है, इसलिए तत्वों में स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। बारंबार उनका आलोचना और बारंबार इसी के ऊपर विचार सतत, हमारे चित्त को हम तंदुरुस्त रख सकते हैं, तंदुरुस्त अवस्था में भजन होगी। हाँ, भगवान का जो चिंतन होता है, भजन होता है, जब चित्त की तंदुरुस्त अवस्था होती है, संसार का राग इत्यादि नहीं होता है, उनकी तंदुरुस्त अवस्था है ना। तो कहते हैं कि वो तो स्वाभाविक, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि स्वाभाविक कृष्ण में मन जाना, क्योंकि कृष्ण ही इन सब का अंशी है, स्वभाव है, लेकिन उनको जबरदस्ती हम लोग यहां रखना चाहते हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं हम जबरदस्ती रखना नहीं चाहते, हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है। ठीक, स्वभाव बन गया है, तो स्वभाव बन जाने के बाद अगर कहीं से पता चल गया कि उल्टा स्वभाव बन गया है तो फिर तो हम सीधा चलना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होता है। ऐसे नहीं विधि भक्ति के साधक जिनका चित्त अभिनिविष्ट हो गया है भगवान में, उन एक रागानुगा भक्त में पर यह दिखाई देता है, चाहता है चित्त। इसलिए तत्व आलोचना बहुत आवश्यक है, इसलिए इन मृत्यु के टाइम जो दुख होता है उन दुख की आलोचना इत्यादि सामने अटियन भागवत में इन सारी बातों को लिखा गया है, उन साधक भक्तों के चित्त को व्यवस्थित रखने के लिए, हरि कथा में उनकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन सारे कथानक को दिया गया, इतिहासों को कथाओं को इसलिए दिया गया, क्योंकि वस्तु तो चित्त है ना, उन चित्त में हम जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही तो हमें फल मिलेगा ना, तो देखा जाता है। आप सोचिए कितना सुंदर डिजाइन बदली करके दे रहे हैं जीव का है? आप तो सब भक्त जानकार है, भगवत गीता की उक्ति भी आपको जब वापिस जितनते मालूम है, आराम से स्त्री की चिंता से स्त्री शरीर मिल जाएगा, और स्त्री पुरुष की चिंता कर तो पुरुष शरीर मिल जाएगा आराम से। चिंतन, ये चिंतन इतना प्रबल है, देखिए जितना भी आविष्कार ये संसार में निकला है ना, वैज्ञानिक जो भी वैज्ञानिक लोग निकाले ये चिंतन के कारण है, उन्होंने बढ़िया से चिंतन किया इस वस्तु के ऊपर। सोचिए भौतिक शक्ति के साथ इन मन को चिंतन में जोड़ने से क्या क्या आविष्कार निकलता है, कितनी अद्भुत अद्भुत चमत्कारिक वस्तु निकलती है उस चिंत से। और चिन्मय जब जीव जब दिव्य वस्तु के चिंतन में चित्त को लगाएंगे कंटिन्यूअस, और दिव्य भक्ति की सहायता से दिव्य शक्ति अलादिनी शक्ति की सहायता लेकर के चित्त को अगर डाला जाए तो क्या कमाल नहीं करेगा वो चित्त, और क्या उनको नहीं मिलेगा बताइए। इसलिए इधर उधर जो चित्त भाग करके जाता है उनके लिए अगर नहीं आता तो मृत्यु का स्मरण बहुत जरूरी है, मृत्यु का स्मरण किया जाए। एक सुंदर कथा कहते हैं साधु लोग उनके विषय में, उन कथा के हम लोग समापन करते हैं क्योंकि लगभग 5 मिनट बाकी है। एक राजा था, वो राजा को अत्यंत घातक बीमारी हो गई और बीमारी से दिन ब दिन उनका जो शरीर है अत्यंत क्लिश होता चला, इतना क्लिश हो गया मरने के दिन नौबत आ गई। सदभाग्य से एक साधु उनके राज्य में आ गया और किसी ने बताया राजा को दुख है, और दुखी है सब, चलो चलो हम चलते हैं, बोले बीमारी है, अरे बीमारी है तो ठीक करेंगे। वो आ करके उनके पास जाकर के उन्होंने कुछ जड़ी बूटी दिया, उन जड़ी बूटी का रस पिलाना चालू किया, डोज देते ही वो राजा का शरीर वापस तंदुरुस्त होने लगा और इतना तेज आने लगा उनकी इंद्रियों का जो बल है ओजस, वो ओजस इत्यादि मन का बल बढ़ने लगा, चित्त का बल बढ़ने लगा, लेकिन साथ में चित्त में विकार भी बढ़ने लगे। और जैसे उनको जो पिला देने ने दवाई, तो साथ जो दवाई इनको दिया जाता था सेम दवाई 3 गुना डोज स्वयं साधु उनके सामने लेते थे, 1 डोज उनको देते थे 3 गुना डोज स्वयं लेते थे। और जब इस प्रकार विकृत मन होने लगा राजा का, सुंदर वैराग्य में स्थित था और विकृत होने लगा मन, तो मन की विकृति उन्होंने साधु के पास बोली, साधु है ना, तो उन्होंने कह दिया महाराज बोले कैसा लग रहा है आपको, 2-3 दिन लेने के बाद तुरंत पूछा कैसा लगा, तो नहीं बहुत तंदुरुस्ती आने लगा लेकिन मेरा चित्त बहुत गड़बड़ करता है, कि उनमें विकार भी उत्पन्न होने लगा है नाना प्रकार का। और आप तीन गुना डोज लेते हैं लेकिन आप में ये विकार उत्पन्न, क्या कारण है, इसका कारण क्या है? मैं देखता हूं मेरे सामने आप तीन गुना डोज पीते हैं इसी दवाई का, ये तो एक डोज देकर के आप फिर तीन गुना डोज आप लेते, आश्चर्य है कि आपने। तो बोलते उसको वो बात तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले महाराज आपने हाथ लंबा करके बोला ना मुझे, तो आपके हस्त में मैंने एक रेखा को दिया देखा, मृत्यु रेखा, मृत्यु का योग आपके हाथ में दिखाई पड़ा महाराज। आज से ठीक एक महीने के बाद आपका मरण है। तो जब ऐसा कहा कि आपका मरण है और फिर डोज चालू रखा उतना ही सेम डोज ना, उन्होंने कहा तो कोई उपाय बताइए, उपाय, बोले उपाय है तो डोज को बढ़ाना पड़ेगा, आप और ज्यादा डोज ले लीजिए। तो उनको भी अपनी तरफ पूर्ण डोज देने लगे साधु, और इन डोज से तो तेज से उनका शरीर फटने लगा महाराज का। लेकिन साधु ने चार पांच दिन जाने के बाद और पूछा ना कैसा तबियत ठीक, बोले आप देख रहे हैं वो तेज तो और ज्यादा डोज लेता हूं तो तेज तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका चित्त कहते हैं क्या अविरत ब्रह्मचर्य का पालन आप कैसे कर पा रहे इस दूध से, ये पूछा था पहले ना उन्होंने। ठीक बोलते हैं महाराज उसका कारण है। उन्होंने कहा कि देखो महाराज एक महीने के बाद मृत्यु होने वाला है ना, एक महीने के बाद है ना, आज चिंता का क्या कारण है, एक महीना मजा कीजिए आप, बोले एक महीने के बाद मरना है ना। बोले महाराज आपको एक महीने के बाद मृत्यु का चिंता है, मैं रोज मृत्यु को याद करता हूं इसलिए डोज कितना भी लूंगा ना कोई फर्क नहीं गिरेगा। तत्व विचार बहुत जरूरी है। जब इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है तो उसका जो निष्कर्ष है उनके ऊपर चर्चा करना चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर चर्चा उठाया। ये बहुत आवश्यक है, इसलिए बार बार मृत्यु को जो अपने सामने देखने वाला व्यक्ति है ना उनका साधन भजन बहुत सुस्त चलता है। हरे कृष्णा, घड़ी मेरे आगे रखा हुआ है, एक घड़ी इधर एक घड़ी सामने। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बाद में मुझे मिले।